एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक काफी अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जो मतलब लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, पर शायद उतनी ही गलतफहमियों का शिकार भी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं टेरिल एल गिविंस की किताब द बुक ऑफ मॉर्मन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन की।
मॉर्मन की पुस्तक का एक छोटा पर गहरा परिचय।
और देखिए, ये विषय आज भी बहुत प्रासंगिक है। ये किताब एक पूरे ग्लोबल धर्म का आधार है, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स।
हाँ, जिसके लाखों अनुयायी हैं। पर होता क्या है कि इसे अक्सर बस एक ही सवाल तक सीमित कर दिया जाता है, क्या ये सच है या झूठ।
सही कहा, जबकि गिविंस हमें दिखाते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें बौद्धिक रूप से भी बहुत कुछ है। और ये किताब एक बैलेंस्ड, एक अकादमिक नजरिया देती है अमेरिकी धार्मिक इतिहास को समझने के लिए भी ये अहम है।
तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना।
सबसे पहले लेखक की बात करते हैं, टेरिल एल गिविंस।
हाँ, इनके बारे में जानना जरूरी है।
ये कोई साधारण लेखक नहीं है, धर्म और साहित्य के जाने माने अमेरिकी विद्वान हैं, रिचमंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस।
अच्छा।
पीएचडी हैं तुलनात्मक साहित्य में, और इनकी विशेषज्ञता धर्मशास्त्र, लिटरेरी थ्योरी और लैटर डे सेंट्स चर्च के इतिहास में है।
और मॉर्मनवाद पर तो इनकी कई किताबें भी हैं ना, जैसे वो बाय द हैंड ऑफ मॉर्मन।
जी हाँ, वो काफी चर्चित रही। पर इनकी सबसे खास बात जो मुझे लगती है
वो क्या है,
वो है उनकी पोजिशन। वो एक तरफ तो एलडीएस चर्च के सक्रिय सदस्य हैं,
मतलब अंदर की समझ रखते हैं,
बिल्कुल आस्था को विश्वास को समझते हैं, लेकिन साथ ही वो एक बहुत ही कठोर, बहुत ही सम्मानित अकादमिक विद्वान भी हैं।
तो आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं।
आस्था और तर्क, या कह लें भक्ति और अकादमिक संदेह, इनके बीच एक पुल बनाते हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प है।
इसीलिए मॉर्मन की पुस्तक जैसे जटिल और अक्सर जिस पर विवाद होता है, उस विषय पर एक भरोसेमंद, विद्वतापूर्ण और फिर भी आसान पहुंच वाली गाइडेंस देने के लिए वो बिल्कुल सही व्यक्ति हैं।
ठीक है, तो अब आते हैं सीधे किताब पर। ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज का हिस्सा है, मतलब कम शब्दों में पूरी बात।
हाँ, ये मॉर्मन की पुस्तक की उत्पत्ति, उसकी कहानी, उसके धार्मिक विचार और उसके सांस्कृतिक प्रभाव का एक अकेडमिक सर्वे है।
और इसका मकसद धर्मांतरण या खंडन नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है शिक्षित करना, जानकारी देना, ये समझने में मदद करना कि भाई 19वीं सदी के न्यूयॉर्क से निकली एक विवादास्पद किताब आखिर एक बड़े विश्व धर्म की नींव कैसे बन गई।
तो इसमें गिविंस का मुख्य तर्क क्या है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि मॉर्मन की पुस्तक पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, चाहे कोई उसे देवीय माने या न माने। उसे सिर्फ धोखाधड़ी या कोरी कल्पना कह देना, एक तरह से उसके असर और उसकी जो बनावट है उसको नजरअंदाज करना है।
तो सच या झूठ से आगे देखना होगा।
हाँ, वो यही कहते हैं कि उस बहस से आगे बढ़कर ये देखें कि किताब कहती क्या है और ये क्यों इतनी अहमियत रखती है।
तो ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं हुई फिर?
गिविंस के हिसाब से तो नहीं, ये एक जटिल साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज भी है जिसने अमेरिकी धार्मिक चेतना को आकार दिया है।
अच्छा,
तो गिविंस हमें चुनौती देते हैं कि न तो इसे आंख बंद करके मान लो, न ही बिना सोचे समझे खारिज कर दो।
लेकिन वो सवाल तो फिर भी रहता है ना कि इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल शुरुआत के बाद ये किताब इतना गहरा विश्वास कैसे जगा पाई लाखों लोगों में।
गिविंस इशारा करते हैं कि जवाब शायद किताब के अंदर ही है, उसके विचारों में, उसकी कहानियों में, जैसे निर्वासन और छुटकारे की थीम और ईसाई धर्म की कुछ धारणाओं को बिल्कुल नए ढंग से पेश करने में। ये चीजें लोगों से जुड़ती हैं।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। पहला अध्याय, उत्पत्ति और संदर्भ, एक नया अमेरिकी शास्त्र।
हाँ, गिविंस हमें 1820 के दशक के पश्चिमी न्यूयॉर्क ले जाते हैं, वो जगह जिसे बर्नड ओवर डिस्ट्रिक्ट कहते थे। बड़ा धार्मिक उथल पुथल का दौर था वो।
दूसरा महान जागरण है ना?
बिल्कुल, नए नए धार्मिक आंदोलन, मौजूदा चर्चों से असंतोष और एक चाहत थी कि ईसाई धर्म का जो असली शुरुआती रूप था उसे फिर से स्थापित किया जाए।
और इसी माहौल में आते हैं जोसेफ स्मिथ, एक युवा किसान।
जी, और उनकी कहानी तो काफी मशहूर है, ईश्वर और यीशु मसीह का पहला दर्शन, फिर देवदूत मोरोनी का मिलना,
और वो सुनहरी प्लेटें जिन पर प्राचीन अमेरिकी भविष्यवक्ताओं का इतिहास लिखा था।
हाँ, और फिर उन प्लेटों का चमत्कारी अनुवाद जिसमें सियर स्टोन्स और उरिम और थम्मीम जैसी चीजों का जिक्र आता है, और साथ में गवाह भी थे, 3 और 8 गवाह।
गिविंस इन सब को कैसे देखते हैं? सिर्फ आस्था का मामला मानकर?
नहीं, वो इन्हें उस समय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रखते हैं। वो इन्हें ऐतिहासिक दावों की तरह परखते हैं।
अच्छा, मतलब वो ये दिखाते हैं कि कैसे ये किताब अपने समय की उपज भी लगती है और एक प्राचीन दस्तावेज होने का दावा भी करती है। ये तनाव बना रहता है।
बिल्कुल।
अब आते हैं कहानी पर। अध्याय 2, कथा, संरचना और सामग्री, ये कैसी कहानी है?
ये कोई सीधी साधी लीनियर हिस्ट्री नहीं है। इसे मॉर्मोन नाम के एक भविष्यवक्ता इतिहासकार ने कई पुराने रिकॉर्ड से संकलित किया है और इसका एक साफ धार्मिक उद्देश्य है।
कितना पुराना इतिहास है इसमें?
करीब 1000 साल का, लगभग 600 ईसा पूर्व से 421 ईस्वी तक। इसमें मुख्यतः लेही और उनके परिवार की कहानी है, जो यरूशलेम से अमेरिका आते हैं, और फिर उनके वंशजों की।
और इसमें कुछ खास पैटर्न या मुख्य बातें?
हाँ, कई हैं। एक तो लेही के दो बेटों नेफी और लैमन के मानने वालों के बीच का संघर्ष, नेफाइट्स और लैमनाइट्स। ये आस्था बनाम अविश्वास, सभ्यता बनाम बर्बरता की लड़ाई बन जाती है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है, जिसे गिविंस गौरव चक्र या प्राइड साइकिल कहते हैं।
गौरव चक्र, ये क्या चीज है?
ये एक तरह की चेतावनी है जो कहानी में बार बार आती है। होता ये है कि लोग पहले धार्मिक होते हैं, ईश्वर को मानते हैं,
फिर वो समृद्ध हो जाते हैं।
हाँ, समृद्धि आती है, लेकिन समृद्धि के साथ आता है घमंड, ऊंच नीच का भाव, समाज में असमानता।
अच्छा।
फिर लोग बुराई की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक पतन होता है, जिससे दुख और तबाही आती है।
और फिर?
फिर दुख से लोग विनम्र होते हैं, पश्चाताप करते हैं और वापस ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है।
ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब समृद्धि भी एक तरह का इम्तिहान है।
बिल्कुल, अगर विनम्रता ना हो तो। के बीच आते हैं।
अच्छा, यीशु अमेरिका में?
हाँ, किताब के अनुसार वो उन्हें उपदेश देते हैं जो बाइबल के सर्मन ऑन द माउंट जैसा है। बीमारों को ठीक करते हैं, 12 शिष्य चुनते हैं, अपना चर्च स्थापित करते हैं।
तो यही किताब का धार्मिक आधार है?
जी हाँ, यही इस किताब का दिल है, और ये इसके उपशीर्षक को सही ठहराता है, यीशु मसीह का एक और नियम।
लेकिन कहानी का अंत तो दुखद होता है।
हाँ, मसीह के जाने के बाद कुछ 100 साल शांति रहती है, पर फिर वही गौरव चक्र, वही घमंड, लड़ाई झगड़े, और अंत में एक भयानक युद्ध में नेफाइट सभ्यता का विनाश हो जाता है।
और मॉर्मन और मोरोनी?
वो आखिरी भविष्यवक्ता बचते हैं। मॉर्मन रिकॉर्ड को संकलित करते हैं और उनके बेटे मोरोनी उसे पूरा करके भविष्य की पीढ़ी के लिए दफना देते हैं। वही प्लेटें जो जोसेफ स्मिथ को मिली कहानी के अनुसार।
वाह, कहानी तो काफी एपिक है। अब आते हैं इसके धार्मिक विचारों पर। अध्याय 3, धर्मशास्त्र और सिद्धांत। गिविंस कहते हैं कि इसकी असली ताकत इसके धार्मिक विचारों में है।
हाँ, बिल्कुल। गिविंस का तर्क है कि ये सिर्फ बाइबल की कहानी नहीं दोहराती, इसमें कई ऐसे विचार हैं जो उस समय के, मतलब 19वीं सदी के पारंपरिक ईसाई धर्म से बहुत अलग थे, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं।
जैसे कि?
ईश्वर के बारे में क्या अलग है?
जैसे ईश्वर का स्वरूप। पारंपरिक ईसाई पंथ ईश्वर को अक्सर अशारीरिक, बिना रूप वाला मानते थे, लेकिन मॉर्मन की पुस्तक एक ऐसे ईश्वर की बात करती है जिसका शरीर है, जो व्यक्तिगत है,
महसूस करने वाला ईश्वर।
हाँ, जो अपने बच्चों के दुख में रोता भी है, उनके जीवन में शामिल होता है। ये काफी अलग था।
और वो सौभाग्यशाली पतन वाली बात।
हाँ, आदम और हवा का पतन।
हाँ, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। पारंपरिक सोच में आदम का पतन एक महापाप, ओरिजिनल सिन है, एक ट्रेजेडी, लेकिन मॉर्मन की पुस्तक कहती है कि ये पतन ईश्वर की योजना का हिस्सा था, एक जरूरी और सौभाग्यशाली कदम।
सौभाग्यशाली कैसे?
क्योंकि इसी पतन से दुनिया में मृत्यु आई और विरोध आया, मतलब अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करने का मौका, और ये दोनों चीजें इंसान के विकास, सीखने और अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी एजेंसी का सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी हैं।
अच्छा।
एक बहुत मशहूर पंक्ति है इसमें, आदम गिरा ताकि मनुष्य हो सकें, और मनुष्य है ताकि उन्हें खुशी मिल सके।
ये तो जीवन को देखने का बड़ा ही आशावादी तरीका लगता है।
हाँ, बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है एजेंसी यानी स्वतंत्र इच्छा पर जोर।
मतलब इंसान चुनने के लिए आजाद है?
हाँ, बहुत जोर है इस पर। इंसान नैतिक एजेंट है, वो ईश्वर की राह चुनकर अनंत जीवन पा सकते हैं या शैतान की राह चुनकर बंधन और मृत्यु,
ये उस समय के कैल्विनवादी विचारों कि सब कुछ पहले से तय है उसके बिल्कुल उलट था।
और जाहिर है किताब यीशु मसीह पर केंद्रित है
पूरी तरह से, शुरू से अंत तक। भविष्यवक्ताओं को उनके जन्म से सदियों पहले उनका नाम पता था, उनके प्रायश्चित बलिदान के बारे में वो सिखाते थे। किताब का पूरा मकसद ही यही है कि सब लोग ये माने कि यीशु ही मसीह अनंत ईश्वर हैं।
ठीक है, ये तो हुए इसके खास धार्मिक विचार, लेकिन इस किताब पर सवाल भी तो बहुत उठे, आलोचनाएं। अध्याय 4 इसी पर है।
हाँ, और गिवेंस इन आलोचनाओं से कतराते नहीं हैं, वो पूरी ईमानदारी से उन्हें सामने रखते हैं
और फिर जवाब भी देते हैं।
वो विश्वासियों और विद्वानों के दिए जवाबों को भी प्रस्तुत करते हैं, मतलब वो पाठक को दोनों पक्ष दिखाते हैं बिना खुद कोई फैसला सुनाए।
तो मुख्य आलोचनाएं क्या क्या है? एक तो लेखकत्व का सवाल है ना, किसने लिखा?
हाँ, क्या ये सब जोसेफ स्मिथ की कल्पना थी या उन्होंने किसी और स्रोत से मदद ली? एक पुरानी थ्योरी थी स्पॉल्डिंग रिग्डन, पर उसे अब ज्यादातर विद्वान नहीं मानते।
और वो कालानुक्रमिकता वाली बात, एनाक्रोनिज्म्स?
जी, किताब में ऐसी चीजों का जिक्र है जो उस समय पूर्व कोलंबियाई अमेरिका में मौजूद थी या नहीं, इस पर बहस है, जैसे स्टील, घोड़े, रथ, गेहूं, रेशम वगैरह।
आलोचक इसे क्या मानते हैं?
वो इसे 19वीं सदी के लेखन का सबूत मानते हैं कि ये चीजें तो जोसेफ स्मिथ के समय में थी, प्राचीन अमेरिका में नहीं।
और विश्वासी विद्वान?
वो वैकल्पिक व्याख्याएं देते हैं, जैसे स्टील का मतलब शायद कोई और कठोर धातु हो, घोड़े का मतलब शायद टेपीर जैसा कोई और जानवर रहा हो। गिविन्स इन बहसों को सामने रखते हैं।
और बाइबल का असर, किंग जेम्स वर्शन की भाषा का इस्तेमाल?
हाँ, ये भी एक मुद्दा है। आलोचक कहते हैं ये साहित्यिक चोरी है, विश्वासी कहते हैं कि ये ईश्वर की भाषा है जो लोगों को समझ आए, या फिर ये उन प्राचीन भविष्यवक्ताओं जैसे यशाया के शब्द हैं जिनका रिकॉर्ड उनके पास था।
और विज्ञान की चुनौतियां, पुरातत्व और डीएनए, ये तो बड़े मुद्दे लगते हैं।
बिल्कुल, किताब में जिन विशाल सभ्यताओं का जिक्र है उनके वैसे पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं जैसी उम्मीद की जाती है।
और डीएनए?
डीएनए सबूत बताते हैं कि अमेरिका के मूल निवासियों के पूर्वज एशिया से जुड़े थे, मध्य पूर्व से नहीं, जैसा किताब की कहानी से लगता है।
तो इसका जवाब क्या है?
कुछ एलडीएस विद्वान सीमित भूगोल मॉडल की बात करते हैं कि ये घटनाएं पूरे अमेरिका में नहीं बल्कि मेजो अमेरिका के एक छोटे से इलाके में हुई, और लेही के वंशज वहां की ज्यादा बड़ी मूल आबादी में घुल मिल गए, इसलिए उनका अलग डीएनए ट्रेस मिलना मुश्किल है।
तो गिविन्स इन सब पर कोई एक जवाब नहीं देते?
नहीं, वो अलग अलग व्याख्यात्मक मॉडल दिखाते हैं कि कुछ लोग इसे शाब्दिक इतिहास मानते हैं, कुछ इसे धार्मिक या साहित्यिक नजरिए से ज्यादा देखते हैं।
ठीक है, इसके बाद अध्याय 5 है साहित्यिक आयामों पर, मतलब इसे एक लिटरेचर की तरह देखना।
हाँ, इसमें कहानी कहने की तकनीक, किरदारों का चित्रण, थीम कैसे विकसित होती हैं, बाइबल और उस समय के दूसरे साहित्य से इसका क्या लेना देना है, इन सब पर बात होती है।
ये भी देखा जाता है कि इसमें प्राचीनता और 19वीं सदी दोनों के तत्व कैसे मिलते हैं।
बिल्कुल, इसमें साहित्यिक युक्तियां कैसी हैं, उस समय के रोमानी और लोकतांत्रिक आदर्शों से ये कैसे जुड़ती हैं।
और फिर आखिरी अध्याय 6 इसकी विरासत और प्रभाव पर है, इसका असर क्या रहा?
असर तो जबरदस्त रहा है। सबसे पहले ये लैटर डे सेंट्स के लिए उनकी आस्था की आधारशिला, की स्टोन ऑफ फेथ है।
आधारशिला मतलब?
मतलब अगर ये किताब सच्ची है तो जोसेफ स्मिथ ईश्वर के भविष्यवक्ता थे और उनका चर्च ही ईश्वर का बहाल किया गया चर्च है। सब कुछ इसी पर टिका है एक तरह से।
अच्छा, और ये धर्मांतरण में भी बहुत अहम है।
हाँ, ये धर्मांतरण का इंजन है। मिशनरी सबसे ज्यादा इसी किताब का इस्तेमाल करते हैं लोगों को सिखाने के लिए।
और वो मोरोनी का वादा क्या है जिसका आपने जिक्र किया था?
वो किताब के बिल्कुल आखिर में मोरोनी का एक न्योता है, वो पाठकों से कहते हैं कि किताब पढ़ने के बाद प्रार्थना करें और सीधे ईश्वर से पूछे कि क्या ये सच्ची है,
और लोगों को जवाब मिलता है।
लाखों सदस्यों का यही कहना है कि उन्हें पवित्र आत्मा के जरिए व्यक्तिगत गवाही मिली है और यही उनके विश्वास का आधार बनता है। ये सिर्फ बौद्धिक सहमति नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है।
तो ये किताब समुदाय को भी जोड़ती होगी?
बहुत ज्यादा। ये एक साझा पवित्र कहानी देती है, अनोखा धर्मशास्त्र देती है, नैतिक उदाहरण देती है। चर्च में, घरों में इसे पढ़ा जाता है, इस पर चर्चा होती है। इसने एक मजबूत, एकजुट धार्मिक संस्कृति बनाने में मदद की है और इसका 100 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिससे यह दुनिया भर में फैली है।
तो अगर हम कुछ मुख्य विषयों या संदेशों को समेटें तो क्या बातें खास हैं? एक तो वो दोहरी पहचान वाली बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, 19वीं सदी का भी, प्राचीन भी।
हाँ, और गिविन्स कहते हैं कि इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। दूसरा बड़ा विषय है वाचा का। ये पूरी कहानी ईश्वर और उसके लोगों के बीच किए गए वादों की है।
वाचा निभाने के फायदे और तोड़ने के नुकसान।
बिल्कुल, और ये LDS सदस्यों को आज के जमाने के वाचा के लोग के तौर पर स्थापित करती है।
और वो निरंतर रहस्य उद्घाटन का विचार कि ईश्वर आज भी बोलते हैं।
हाँ, ये बहुत रेडिकल, बहुत क्रांतिकारी विचार है। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि भाई बाइबल आ गई, अब धर्मग्रंथ बंद, अब ईश्वर नहीं बोलेंगे।
LDS मानते हैं कि ईश्वर आज भी बोलते हैं।
हाँ, भविष्यवक्ताओं के जरिए। ये उनकी आस्था का आधार है। ये एक तरह से रहस्योद्घाटन को, ईश्वर के वचन को सबके लिए, आज के समय के लिए भी सुलभ बनाता है।
और मानव क्षमता के बारे में वो आशावादी सोच, सौभाग्यशाली पतन, एजेंसी, खुशी की तलाश।
जी, और यीशु मसीह सिर्फ मध्य पूर्व के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान के उद्धार करता है।
और एक चेतावनी जो बार बार आती है।
हाँ, घमंड और सामाजिक ऊंच नीच का खतरा, वो गौरव चक्र, ये दिखाता है कि समाज कैसे बिखरता है जब लोग ईश्वर को भूलकर पैसे, रुतबे और ताकत के पीछे भागते हैं और गरीबों को नजरअंदाज करते हैं।
ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है ना?
बिल्कुल, ये सिर्फ धार्मिक इतिहास नहीं, इसमें सामाजिक टिप्पणी भी है।
चलिए अब कुछ यादगार पंक्तियों या विचारों पर बात करते हैं जो गिविन्स की किताब से खास तौर पर उभरते हैं।
एक तो गिविन्स का ये कहना कि मॉर्मन की पुस्तक की धार्मिक संरचना आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और नवीन है, जो जोसेफ स्मिथ के दिनों के ईसाई रूढ़िवादों से एक कट्टरपंथी प्रस्थान प्रस्तुत करती है।
ये साफ करता है कि इसमें कुछ मौलिक और अलग है। और वो सौभाग्यशाली पतन वाली लाइन, आदम गिरा ताकि मनुष्य हो सकें और मनुष्य हैं ताकि उन्हें खुशी मिल सके, ये जीवन के उद्देश्य पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालती है।
हाँ, मतलब पतन बुरा नहीं, जरूरी था।
हाँ, विकास के लिए जरूरी।
और सेवा पर यह पंक्ति मुझे बहुत पसंद है, जब तुम अपने साथी मनुष्यों की सेवा में होते हो तो तुम केवल अपने परमेश्वर की सेवा में होते हो।
ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। मतलब पूजा सिर्फ मंदिर मस्जिद में नहीं, लोगों की सेवा में भी है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा।
बिल्कुल, ये धर्म को बहुत व्यवहारिक बना देती है। और आखिर में विश्वास की प्रकृति के बारे में ये बात, मॉर्मन की पुस्तक का स्थायित्व अनुभवजन्य प्रमाण में निहित नहीं है बल्कि व्यक्तिगत पाठक के हृदय में व्यक्तिगत आध्यात्मिक गवाही को सुगम बनाने की इसकी शक्ति में निहित है।
मतलब सबूतों से ज्यादा अहम है व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत कनेक्शन।
हाँ, आस्था का आधार अनुभवजन्य साक्ष्य से ज्यादा उस व्यक्तिगत आध्यात्मिक पुष्टि में है।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं भले ही हम LDS सदस्य ना हो?
पहली बात तो यही, जैसा हमने शुरू में कहा कि अगर हमें दुनिया के एक प्रमुख धर्म को समझना है तो ये किताब उसकी चाबी है। ये LDS लोगों के विश्वासों, उनकी दुनिया देखने के नजरिए को समझने में मदद करती है बिना किसी बहस या विवाद के।
और गिविन्स का जो तरीका है, सम्मानजनक अकादमिक नजरिया, वो शायद हमें अंतरधार्मिक संवाद के लिए भी कुछ सिखा सकता है।
बिल्कुल, दूसरों की आस्था को समझे बिना खारिज न करना, सम्मान से उनकी बात सुनना, और किताब का जो ईश्वर के प्रेम का व्यापक नजरिया है वो भी उदारता को बढ़ावा देता है।
और किताब के अंदर जो विषय हैं, मुक्ति पाना, घमंड से बचना, परिवार के झगड़े, समाज का उत्थान पतन, ये तो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल थीम्स।
हाँ, हम सब इनसे जुड़ सकते हैं। वो गौरव चक्र वाली बात ही ले लीजिए, क्या वो आज हमारे समाज पर, हमारे अपने जीवन पर लागू नहीं होती? सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना कितना मुश्किल होता है।
सही कहा। या वो सेवा वाली बात, क्या हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे तरीकों से दूसरों की मदद करने पर ध्यान दे सकते हैं?
और ये हमें आलोचनात्मक सोच भी सिखाती है, कैसे अलग अलग तरह के दावों, ऐतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित को परखा जाए, विश्वास और तर्क को कैसे साथ लाया जाए।
सामाजिक न्याय की बात भी इसमें, कमजोरों की देखभाल, आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज, ये सब तो आज भी बहुत जरूरी मुद्दे हैं।
हाँ, परिवार के रिश्तों पर, बच्चों के पालन पोषण पर भी इसमें बातें हैं, मुश्किल समय का सामना कैसे करें इस पर भी।
तो कुल मिलाकर इस किताब और गिविन्स के विश्लेषण से सबसे बड़ा सबक या टेक अवे क्या है?
मेरे लिए शायद ये कि मॉर्मन की पुस्तक को किसी एक आसान कैटेगरी में रखना नामुमकिन है। ये ना तो साफ तौर पर धोखाधड़ी कही जा सकती है, ना ही बिना किसी सवाल के इतिहास।
ये उसे कहीं ज्यादा जटिल है।
हाँ, ये धार्मिक रूप से गहरी है, साहित्यिक रूप से जटिल है और सांस्कृतिक रूप से बेहद शक्तिशाली साबित हुई है। ये हमें याद दिलाती है कि धार्मिक ग्रंथों पर गंभीरता से बौद्धिक रूप से विचार करने की जरूरत है। सिर्फ उन्हें मानना या न मानना काफी नहीं है,
और शायद हमें अपना सवाल बदलना होगा। क्या ये सच है से आगे बढ़कर ये पूछना होगा, ये क्या कहती है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों इतने लोगों के लिए मायने रखती है।
बिल्कुल, इसका महत्व शायद अनुभवजन्य सबूतों में उतना नहीं जितना इस बात में है कि ये कैसे लाखों लोगों में आस्था जगाती है, कैसे ये ईश्वर और मानव जीवन की एक खास तस्वीर पेश करती है, और ये दिखाती है कि अमेरिका में शुरू हुआ एक धार्मिक विचार कैसे दुनिया भर में फैल सकता है।
गिविंस की किताब इस पूरी पहेली को समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड है, संतुलित, गहरी, जो आस्था और आलोचनात्मक सवाल दोनों का सम्मान करती है।
हाँ, ये दिखाती है कि अकादमिक अध्ययन और गहरी समझ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि दोस्त हो सकते हैं। ज्ञान आस्था को कमजोर नहीं बल्कि और गहरा कर सकता है।
और शायद यही आखिरी विचार है हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को, कैसे हम अपनी या दूसरों की आस्थाओं को और गहराई से समझ सकते हैं अपनी आलोचनात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, कैसे ज्ञान और विश्वास को एक साथ साधा जा सकता है।
एक जरूरी सवाल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।